हरे कृष्णा। अपने घरों में हरी कथा के सुनने के लिए जो प्रेमी आए हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। कुछ दिनों से हम 14वें अध्याय भगवद गीता में गुण त्रिविभाग योग, प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव कैसे मानव के ऊपर पड़ता है, इंसान के ऊपर पड़ता है, उनकी पहचान क्या है और उनसे मुक्त होकर भगवान को कैसे पाया जा सकता है, तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के तीन गुण हैं। सतोगुण में ज्ञान होता है और सुख की अनुभूति होती है। रजोगुण में लोभ होता है, कर्म होता है और हमेशा चिंता रहती है। और तमोगुण में आलस होता है, निद्रा होती है और पागलपन जैसा व्यवहार होता है। इन्हीं तीन गुणों के ही प्रभाव से चार वर्णों को विभाजन किया जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण आज हम 19वें श्लोक से आगे भगवत वाणी को पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण 19वें श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं, नायम गुणेभ्य तत्रारम कर्तारम, न अन्य इन गुणों के अलावा और कुछ भी कर्तारम करने वाला नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है ये गुण कर रहे हैं। तीन गुणों के प्रभाव से सभी जीव, मानव विशेष रूप से इंसान, जो कुछ भी करता है वो सब इन तीन गुणों के प्रभाव से होता है और कोई कारण नहीं है। नायम गुणेभ्य कर्तारम, इन गुणों के अलावा और कोई कारण नहीं है। यदा दृष्टानुपश्यते, अगर कोई इसको अच्छी तरह से देखता है, ये अच्छी तरह से देखने के लिए साधु संतों के संग में इन गुणों के प्रभाव को समझना पड़ेगा, तब हमको पता लगेगा कि इस वक्त हमारा शरीर कौन से गुण के प्रभाव में है और हम क्या कर रहे हैं। ये जब देखने में आएगा तब भगवान कहते गुणेभ्य च परम वेति, अगर कोई इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए, साक्षी बन जाए। ये गुणे गुण किससे काम लेते हैं, शरीर से। मैं तो शरीर हूं नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तो जो ऐसे समझ लेता है कि गुण इस शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं, मैं शरीर से अलग आत्मा हूं, मैं तो साक्षी हूं इनके शरीर के अंदर गुणों के प्रभाव का, जो ये जान लेता है, मदभावम स्वाधिगच्छति भगवान कहते हैं, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है। तो भगवान का भाव क्या है, भगवान सच्चित आनंद है, तो जीव भी सच्चित आनंद। भगवान जैसे गुण जीव में आते हैं, लेकिन भगवान जितने नहीं, भगवान जैसे। भगवान अनंत है और जीव सीमित है, जैसे एक कतरा और एक समुंदर, दोनों के अंदर अगर नमक का मात्रा देखी जाए तो समुद्र में बहुत ज़्यादा है और कतरे में कम है, लेकिन परसेंटेज देखा जाए तो दोनों में बराबर है। जैसे गंगा का जल हमारे घर में बोतल में है वो भी गंगा जल है, और गंगा जो चल रही है हरिद्वार में वो भी गंगा जल है। तो बोतल वाले गंगा जल में तैर नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका गुण वही है जो गंगा जी का है। तो जो तीनों गुणों के प्रभाव से अपने आप को अलग कर लेता है, ऊपर उठ जाता है, वो भगवान कहते हैं मेरे भाव को, अगर भगवान या कृष्ण बोल रहे हैं तो कृष्ण भावना में स्थित हो जाता है। कृष्ण भावना में स्थित हो जाता है का मतलब है वो फिर भौतिक स्तर से ऊपर उठ के अपने आध्यात्मिक अस्तित्व में, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो इस श्लोक का भाव ये है, तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहले इन गुणों को समझना चाहिए कि ये गुण हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं। आप एक उदाहरण आपको दें, आप तो अगर ऑटो में बैठ के जाएंगे, एक बार आप ऑटो में बैठ लें, फिर ऑटो चलने के बाद जैसे खड्डे में ऑटो जंप खाएगा, आपको जंप खाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते अब मैं जंप नहीं खाऊंगा, क्योंकि आपने ऑटो में बैठने का पहले से ही निर्णय कर लिया है, तो ऑटो की स्पीड से ही चलोगे, ऑटो का आवाज ही सुनना पड़ेगा। और अगर आप मर्सिडीज कार में बैठ गए हो तो मर्सिडीज कार के ही आराम से जाओगे जैसे वो जाएगी, और जहाज में बैठ गए तो जहाज की स्पीड से जाओगे, फिर आपको बदल नहीं सकते उसको। तो ऐसे ये हमारा शरीर मानो के ऐसे है, तमोगुण में ऑटो जैसा हो गया, और रजोगुण में है जो सो कार जैसा हो गया, और सतोगुण में अगर है तो जहाज जैसा हो गया। हमने जिस गुण की गाड़ी में बैठ गए, जो उस वक्त हमारे शरीर की स्थिति कौन से गुण की है, वो वैसा ही हमको करना पड़ेगा, वैसा ही हमारा स्वभाव हमारा विचार ऐसा, जैसे उस गाड़ी की स्पीड वैसी होगी, उसका आवाज वैसा ही होगा, फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार चुन लेने के बाद चेंज नहीं कर सकते, उसमें हम चाहें तो भी उतर नहीं सकते, जहाज से हम चाहें तो भी उतर नहीं सकते, जब तक जहाज चलेगा तब तक रहना पड़ेगा। तो ये तीन गुण हमारे शरीर को संचालित करते हैं, चलाते हैं, और जिस गुण का प्रभाव होता है उस गुण के प्रभाव से हमको काम करना ही पड़ता है, वो हमारी आदत बन जाती है। ये एक पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए, ये पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए। एक चोर था, चोरी करने की आदत थी, चोरी करने की आदत लोभ लालच के कारण था, तमो रजोगुण का प्रभाव भारी था, लेकिन साधुओं के संग में आया, सत्संग में बैठा तो मन में आया कि चोरी छोड़ना चाहिए, साधुओं के संग में चलो हम जाते हैं हरिद्वार। तो रास्ते में चला, रात को नींद आए नहीं चोर को, क्योंकि चोरी करने वालों को रात को नींद आती नहीं है, वो रात को ही चोरी करने जाता है। अब इसको नींद ना आए, उसके हाथ में खुजली हो कि अभी किसका सामान उठाऊं, लेकिन कैसे उठाऊं, मैं तो संतों के संग जा रहा हूं, लेकिन उसके गुण का ऐसा भारी प्रभाव, आदत का ऐसा भारी प्रभाव, उसका स्वभाव ऐसा बना हुआ था गुणों के प्रभाव से, वो एक साधु के झोले में से धोती निकाल के दूसरे साधु के झोले में डाल दी, एक का लोटा निकाल के दूसरे में डाल दिया, और एक का एक चीज दूसरे में, दूसरे का दूसरे चीज, सुबह उठ के सब साधु कह रहे मेरी धोती कहाँ गई, मेरा लोटा कहाँ गया, आए कौन आया, किसने चोरी कर दी, किसने खोल दिया। ये उठ के कहता है महाराज लड़ाई मत करो, तुम्हारी धोती उसके थैले में, तुम्हारा लोटा उसके थैले में। बोला किसने किया, बोला महाराज मैंने किया, मुझे माफ करना, मैं चोर हूँ, मैं स्वभाव मेरा ऐसा है, मैं मजबूर हूँ, मैं चोरी तो करना छोड़ दिया, लेकिन हेरा फेरी चरण करने छोड़ने में अभी और बहुत टाइम लगेगा। स्वभाव ऐसा प्रबल होता है कि आदमी के जिस गुण का प्रभाव है वो काम कराएगा ही कराएगा, आप उसको कितना भी छोड़ने का प्रयास करो नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पहले हमको ये अगर पता लग जाए कि हम कौन से गुण के प्रभाव में इस वक्त काम कर रहे हैं, तो फिर हम उसके बच सकते हैं। ये पहली बात है कि इनसे ऊपर उठने के लिए पहले उन गुणों को समझना चाहिए। बोला किस से गुणों को समझना चाहिए, बोला जो शास्त्र को जानते हैं और जो इन गुणों के प्रभाव से बचने का अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और सफलता प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे संत महात्माओं के संग में बैठने से, उनसे इनके विषय में सुनने से। प्रभुपाद जी महाराज तो यहाँ लिखते हैं कि आदि गुरु तो भगवान है साक्षात, वंदे कृष्ण जगत गुरु, वही तो भगवान तो गुरु ही है, वही अर्जुन को शिक्षा दे रहा है। जो इस शिक्षा को ठीक तरह से समझने का प्रयास करता है, भक्तों के संग में बैठ के इसको समझता है और तीनों गुणों के प्रभाव को अगर जान जाता है, तो अपने स्वभाव में परिवर्तन ला सकता है। वैसे भी कहावत है जैसा संग करेंगे वैसा रंग लगेगा, तो ऐसे साधु संग से हमारे स्वभाव में परिवर्तन आएगा। तो ये परिवर्तन लाके हमको ऊपर उठना है, हमारे को आध्यात्मिक स्थिति पे आना है, तो हम जैसे गुण के प्रभाव में होंगे वैसे ही हमको करना पड़ेगा, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। इसके लिए हमारे को एक काम करना चाहिए, पहले इन गुणों को समझना चाहिए। अब 20वें श्लोक में आगे भगवान कह रहे हैं, गुणान एतान अतीत्यतरण, इन तीनों गुणों से अतीत हो जाओ, मतलब इनसे ऊपर उठ जाओ, इनसे मुक्त हो जाओ। देही देह समुद्भवन, देही देह, देही का मतलब शरीर, देह का मतलब ना, देही मतलब मालिक और देह का मालिक, शरीर का मालिक। गुण किसके ऊपर प्रभाव डालते हैं? शरीर के ऊपर। किसके माध्यम से? मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से इस शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। और मैं अगर ये समझ लूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, पहले ये बात समझ लूं, तो हम तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि हम शरीर से ऊपर हैं, हम शरीर तो हैं नहीं। भाई जैसे कोई पूछा जाए कि आप ये घर हो, अब मैं घर तो नहीं हूं, मैं घर का मालिक हूं, तो घर और घर का मालिक अलग है, कार और कार का मालिक अलग है, ऐसे शरीर और शरीर का मालिक भी अलग है। अगर ये हमको समझ में आ जाए, आप जहां लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण, जो इन तीनों गुणों से अर्जुन ऊपर उठ जाता है वो अपने आप को अलग आत्मा मान लेता है, और गुणों का प्रभाव शरीर के ऊपर होता है, तो उसको लाभ क्या होगा? अथवा ये कहा जाए कि गुणों से ऊपर उठने का लाभ क्या है? अगले श्लोक, पहले हमने श्लोक में क्या कहा? भगवान ने कहा मेरे जैसा उसका भाव प्राप्त हो जाएगा। अब कहते हैं जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो, वो फिर विशेष रूप से मुक्त हो जाएगा। किससे? जन्म लेने से, मृत्यु से और दुख से। भाई क्यों? इसका मतलब अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ जन्म शरीर का होता है, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा तो मरता नहीं है। दुख किसको होता है? शरीर को होता है, आत्मा को तो नहीं होता है। तो जो ये समझ लेता है कि गुणों का प्रभाव शरीर के ऊपर है और मैं शरीर से अलग हूं, मैं भगवान का अंश हूं, गुण जिस गुण का प्रभाव शरीर के ऊपर है वो शरीर वैसे काम करेगा, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये अगर बात समझ में आ जाए तो जन्म मृत्यु और दुख से मुक्त हो जाएगा। बोला फिर क्या मिला? वो मिलेगा अमृत अश्नोति। अश्नो कहते हैं खाने को, अमृत पिएगा। वो अमृत का अमृत नाम, भगवान का नाम अमृत है, जैसे यहां सुनते रहते हैं अमृत नाम ठाकुर को, भगवान ठाकुर कहते हैं जिसकी पूजा की जाए, जो पूजन्य है, जैसे ये विग्रह है इसको ठाकुर कहते हैं, ठाकुर का स्वरूप है, तो अमृत प्राप्त होगा। मृत्यु से जाएगा तो अमृत प्राप्त होगा। इसका मतलब शरीर मृत्यु और जन्म लेता है, आत्मा नहीं लेती है। गुण किसके ऊपर प्रभाव डालते हैं? सूक्ष्म और स्थूल शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं, आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डालते हैं। आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का गुण भगवान जैसा है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। तो इसलिए जो ये जानता है, सुनता है, समझता है, भक्तों के संग में, साधुओं के संग में, सत्संग में, तीन गुणों के प्रभाव से अपने आप को अगर ऊपर उठा लेता है तो जन्म मृत्यु और दुख से विशेष रूप से मुक्त होके अमृत को प्राप्त करेगा। वो अमृत को प्राप्त करने के स्तर के ऊपर पहुंच जाएगा। वो अमृत क्या है? असल में आध्यात्मिक आनंद है, जिसको ब्रह्म आनंद कहते हैं। वो ब्रह्म आनंद की अनुभूति करेगा, उसका स्तर ब्रह्म के स्तर के ऊपर पहुंच जाएगा। और ये स्तर क्या वर्णन 18वें अध्याय में किया हुआ है, 18वें अध्याय में इसका वर्णन किया है, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मान सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिम लभते पराम। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, जो आध्यात्मिक स्तर पे आ गया, गुणों के प्रभाव से मुक्त हो गया, वो प्रसन्न है। प्रसन्न क्या है? आत्मा। आत्मा है ही आनंदमय, तो वो प्रसन्न आत्मा। न सोचति न कांक्षति, सोचति का मतलब क्या है? शोक करना, दुख करना, और कांक्षति का मतलब कुछ प्राप्त करने के लिए तड़पना के ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो न तो उसको कुछ पाने की इच्छा है और न कुछ खोने का दुख है, क्योंकि वो आत्मा के आनंद में स्थित है। उसका उसकी ज्योति, उसका स्वरूप, उसकी आत्मा का जो आनंदमय है उसको उसने जान लिया है। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न का सम सर्वेशु भूतेषु, सब के साथ बराबर का व्यवहार करता है, न कोई दुश्मन है न कोई दोस्त है, न कोई पराया है न कोई अपना है, सबके साथ बराबर का व्यवहार करता है। मद भक्तिम लभते पराम, तब असल में मेरी परा भक्ति को, मेरे तीनों गुणों से ऊपर उठेगा तभी मेरे स्तर के ऊपर आएगा, तभी मुझे जानेगा, तभी प्रेम से मेरी सेवा में लग के मेरी भक्ति करेगा। इसके बाद अर्जुन प्रश्न पूछता है, अर्जुन वाच, अर्जुन का प्रश्न है, कैर्लिंगे त्रिन गुणान एतान अतीतो भवती प्रभो, हे भगवत भगवान, हे स्वामी, हे मेरे गुरुदेव, तीनों गुणों से कोई आदमी ऊपर कैसे उठ सकता है? पहला प्रश्न ये है कि तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए। दूसरा प्रश्न है किम आचरतः, कैसे उसका आचरण होता है, वो कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, उसका व्यवहार कैसे होता है। कथम चैतान त्रिगुणान अतिवर्तते, और जो तीनों गुणों से ऊपर चला उठ गया है उसको कैसे पहचाना जाए, उसके अंदर क्या लक्षण है जिससे पता लग जाए कि इसने तीनों गुणों को पार कर लिया है, और जिन्होंने तीनों गुणों को पार कर लिया है उसके कैसे वो उठता कैसे है, बैठता कैसे है, क्या लिखा है, आचरण कैसा है उसका, आचरण का मतलब उठना बैठना, और उसके लक्षण क्या है, किस किन लक्षणों से उसको पहचाना जाएगा, क्या क्या करेगा जिससे पता लगेगा कि ये तीनों गुणों से ऊपर उठा है, और तीसरा प्रश्न है तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए। तो इन प्रश्नों, तीन प्रश्नों का उत्तर भगवान देते हैं, तीन श्लोकों में इनका उत्तर देते हुए भगवान पहले कहते हैं जो तीनों गुणों से ऊपर होता है उसके लक्षण क्या होते हैं। श्री भगवान वाच, प्रकाशकम च प्रवृत्तिम च मोहम च एव च पांडव। प्रकाशम, प्रकाशम प्रकाश आया था ज्ञान, ज्ञान है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति है रजोगुण, प्रकाश है सतोगुण, प्रवृत्ति है रजोगुण, और मोह है तमोगुण। प्रकाश का मतलब ज्ञान और प्रवृत्ति का मतलब लोभ कर्म कुछ करना, और मोह का मतलब भ्रम में पड़ा रहना, ये तीनों गुण है। चैव पांडव, जो भी हे अर्जुन इन तीनों गुणों के प्रभाव होने से न द्वेष्टि, इनसे आ गए तो उससे द्वेष नहीं करता है, आए तो शरीर में आए, मेरे में तो नहीं आए, मैं तो इससे अलग हूं। भाई शरीर में इनका प्रभाव पड़ा, नींद आई शरीर को आई है, मैं तो मेरे को तो नहीं आई है, तो तमोगुण का प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ा है, रजोगुण का प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ा है, मुझकी मेरे ऊपर नहीं पड़ा है, मैं इसका साक्षी हूं। न द्वेष्टि, द्वेष का मतलब है किसी से द्वेष करना, उसको बुरा मानना। सम प्रवृत्तानी न निवर्तानी कांक्षति, प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो रास्ते हैं। प्रवृत्ति का रास्ता है कि नहीं नहीं मुझे ये मिलना चाहिए, निवृत्ति का रास्ता है मुझे नहीं चाहिए, तो ये आए तो उनको खुशी नहीं है, जाए तो उनको दुख नहीं, क्योंकि ये गुण तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्योंकि जब तक शरीर है गुण इस शरीर के ऊपर गुणों का प्रभाव आता जाता रहता, लेकिन उसके आने जाने से जो विचलित न हो, प्रभावित न हो, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानी न निवृत्तानी कांक्षति। संप्रवृत्तानी सम्यक प्रवृत्तानी, अच्छी तरह से आसक्त भी नहीं होता है उनमें, और उनके जाने के ऊपर उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास भी नहीं करता है। ये जो तीनों गुणों से ऊपर है उसकी पहचान है। तीनों गुण आएंगे शरीर के ऊपर प्रभाव डालेंगे, मैं इससे अलग हूं, आए हैं तो आने दो, जाए हैं तो जाने दो, तो आने और जाने के ऊपर, ना आने के ऊपर खुश होता है ना जाने के ऊपर दुख करता है, ना प्राप्त करने का प्रयास करता है और ना जाने के लिए दुखी होता है। अब उसकी उसके अंदर लक्षण क्या होते हैं, न निवर्तान का उदासीन बद आसीनु, कैसे बैठ रहा है उदासीन बद आसीनु। आसीन का मतलब बैठना, उदासीन का मतलब ऊपर उठ के बैठना। ऊपर उठ के बैठने का मतलब है अगर हम बैठे हैं छत के ऊपर और नीचे दो बैल लड़ रहे हैं, तो बैल नीचे लड़ रहे हैं और नीचे ही एक दूसरे को मार रहे हैं, कुछ गिर रहा है, कुछ खराब हो रहा है, लेकिन हमको तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि हम तो ऊपर खड़े हैं। उदासीन का मतलब ऊपर खड़े होना, साक्षी के भाव से बैठ रहना, न्यूट्रल, बिल्कुल उदासीन होके ऊपर बैठे। एक संप्रदाय पूरी है उसको उदासीन संप्रदाय कहते हैं। सिंधी महात्मा जितने भी है, सिंधी संत जितने भी है, प्रायः सब उदासीन संप्रदाय के, गुरु नानक बाबा के बेटे श्रीचंद की उदासीन संप्रदाय, उनके संप्रदाय का नाम ही उदासीन है। ये संत सारे उदासीन संत कहलाते हैं। तो ये उदासीन का मतलब है आए का दुख नहीं, गए का, आए का कोई खुशी नहीं, गए का दुख नहीं, दोनों में बराबर। तो वो क्यों नहीं दुखी होता है इन गुणों के आने के ऊपर, क्योंकि उदासीन है, साक्षी है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसने अपने आप को उस स्थिति में स्थापित कर लिया है। अब उनके लक्षण क्या है, गुणे यनो विचाल्यते गुणान वर्तन्ते एवं यो अवतिष्ठि नेंगते। गुणों के आने और जाने के ऊपर विचलित नहीं होता है, गुण आएंगे गुण जाएंगे, मैं गुण 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 मेरे ऊपर गुण का प्रभाव नहीं पड़ता है, शरीर के ऊपर पड़ता है, मेरे ऊपर नहीं पड़ता है, मैं उससे अलग हूँ। अवतिष्ठ नहीं, और उसका विचार क्या होता है, समलोष्ट्रा सम सम दुख सुख स्वस्थ, सुख और दुख में उसका विचार एक जैसा रहता है। ये कहावत है, सुख सपना दुख बुदा दोनों है मेहमान, उसको आदर दीजिए जो भेजे भगवान। सुख सपना, सुख सपने जैसा है सदा रहेगा नहीं, दुख बुदबुदा, दुख भी पानी के बुदबुदे जैसा है सदा रहेगा नहीं, ये दोनों गुणों के प्रभाव से आए हैं, मेरे कर्मों के प्रभाव से आए हैं, भगवान निर्णय करके अगर भेजे हैं तो आइए बैठिए, बैठेगा कोई नहीं, दोनों चले जाएंगे। तो न दुख से दुखी होता है न सुख से सुखी होता है, दोनों से ऊपर अपने आप में स्थित होता है। और समलोष्ट्रा सम कांचना, उसके लिए पत्थर और सोना बराबर है, क्योंकि दोनों ही भौतिक चीजें हैं जो यहीं रह जाने वाली है, साथ जाने वाली है। वो समझता है कि सोना सोने के काम आता है, पत्थर पत्थर के काम आता है। दीवार बनानी है तो सोने से नहीं बनेगी, पत्थर से बनेगी। जेवर बनाना है तो पत्थर से नहीं बनेगा, सोने से बनेगा, ये तो जानता है। लेकिन सोना आने से खुश हो जाए और पत्थर आने से दुखी हो जाए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए दोनों बराबर हैं, क्यों ये सेवा इन चीजों को जानता है। पत्थर से मंदिर बनाना है, सोने से भगवान के आभूषण बनाना है, ये तो समझ सकता है, लेकिन मेरे को इससे कोई लाभ है क्या, यानी है इससे कोई मतलब नहीं। तो उसके लिए समलोष्ट्रा सम कांचना, लोष्ट कहते हैं पत्थर को, कांचन कहते हैं सोने को। तुल्य प्रिया अप्रिय, तुल्य तुल्य मतलब बराबर, प्रिय अप्रिय, कभी कोई प्रिय चीज आ गई, कभी कोई अप्रिय चीज आ गई जीवन में। देखो सदा हमेशा किसी को सब अपनी पसंद की चीजें नहीं मिलती हैं, और सदा हमेशा किसी को दुखदायक वाली चीजें नहीं मिलती है। तो प्रिय हो या अप्रिय चीज हो, दोनों के अंदर धीरजवान है। एक नौकर था किसी सेठ के पास, सेठ हमेशा जो खाते थे उसको देते थे, उसका बड़ा ध्यान रखते थे, और कई सालों से सेवा कर रहा था। एक दिन खीरा काटा और सेठ ने खाया नहीं, उसको खाने को दिया, उसको एक टुकड़ा दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, वो खाता गया। सेठ ने चखा, खीरा बहुत कड़वा था, थू थू करके फेंका। अरे बोला, तुमने मुझे बताया नहीं कड़वा है। बोला, सेठ जी 25 साल से आपके घर का इतना मीठा खाया है, एक दिन आपने खारा दे दिया, आपके हाथ का खारा खारा करके, मैं 25 साल के मीठे के देने की बदनामी नहीं करना चाह रहा था, आपने दिया मैंने स्वीकार कर लिया। तो भगवान की तरफ से इतनी कृपा की है, इतना मानव का दिव्य शरीर दिया है, इतना हमको सुख संपत्ति दिए, तो कभी जीवन में दुख भी आए तो उसके लिए चिल्लाना हाहाकार करने की जरूरत नहीं है। आया है तो टल जाएगा, संकट आया है, संकट जिसके निर्देश से आया है उसके ही आदेश से चला भी जाएगा। ये संसार की कोई चीज़ भगवान की इच्छा के बगैर तो चल नहीं सकती है, इसलिए मारे हमारे को भगवान का शरण लेना चाहिए। ये हमने आपको पहले भी बताया था, कोई संत के पास गया और पूछा महाराज कुछ उपदेश दिए, बोला शेर बनो कुत्ता मत बनना, बोला दोनों में अंतर क्या है, बोला शेर को मारने वाला जो है जो चीज़ मारता है उसको नहीं देखता है, मारने वाले को देखता है, और कुत्ता जो चीज़ उसको मारोगे उसी को देखेगा। पत्थर मारोगे तो पत्थर की तरफ जाएगा, मारने वाले की तरफ नहीं आएगा, चीज़ की तरफ जाएगा। शेर जो चीज मारने वाला है उसको देखेगा, चीज़ को नहीं देखेगा। ऐसे दुनिया के अंदर दुख आए सुख आए देने वाले के ऊपर नज़र रखना, सुख और दुख के ऊपर नज़र रख नहीं रखना। एक संत के पास कोई गया, महाराज संकट की घड़ी आती रहती है, कोई हमको मंत्र दे दें, ऐसा कुछ पानी पढ़ दें या मंत्र लिख दें, तावीज़ बना दें। संत ने एक पन्ने को कुछ लिख के बंद करके दे दिया, बोला संकट की घड़ी आए तो इसको खोलना तो तेरा समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत बड़ा संकट आया, परिस्थिति बिगड़ गई, याद आया संत का, पन्ना खोला और पन्ने में लिखा क्या था, ये भी गुजर जाएगा चिंता मत करो, ये भी गुजर जाएगा, रुकेगा नहीं ये। तो ये अभी जो संकट आया है महामारी का, कोरोना का, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। भगवान के ऊपर विश्वास रख के उसका शरण लेना चाहिए, दृष्टि उसके ऊपर जमा के रखनी चाहिए। जिसने भेजा है वो वापस बुला भी सकता है, और क्या पूरे विश्व के कर्मों के कारण आया है, किस चीज़ पर्यावरण को सुधारने के लिए आया है, क्या करने आया है, हमारी सोच से ऊपर की बात है। लेकिन भगवान जो तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, वो कहते हैं ये प्रिय हो या अप्रिय हो, दोनों में धीरजवान है। यहाँ लिखा है धीरजवान का मतलब है सहने की शक्ति हो जिसमें। धीर वो है जो बहुत लुभावनी चीज़, मन को भाने वाली चीज़ आने के ऊपर फूलता नहीं है, और कभी कोई संकट की घड़ी आए तो उस वक्त सूखता नहीं है। दुख में भूलो नहीं, सुख में फूलो नहीं, गोविंद गोपाल गाते चलो, हरि नाम का खजाना लुटाते चलो। देखो इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के कोड़े लगे। ये इंद्रियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है गुणों का। मन भी एक महान इंद्रिय है जो सारे इंद्रियों का संचालन करती है लगाम की तरह। इनको अच्छी तरह से वश में रखने का प्रयास करो, आत्मा के ऊपर स्थित हो जाओ। एक उदाहरण देते हैं भगवद गीता के फोटो के आधार के ऊपर, कि एक रथ है जिसको घोड़े खींच रहे हैं, लगाम उसके अंदर है और लगाम सारथी की जगह पे ऊपर बैठे हुए श्री कृष्ण के हाथ में है, और एक हाथ में लगाम है और दूसरे हाथ में चाबुक है। परपन्न पारिजाताय तोत्रे वे त्रैक पाणि ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मृत द्वे नमः। ये पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान है। परपन्न पारिजाताय, जिन्होंने भगवान का शरण ले लिया उनके लिए भगवान कल्प वृक्ष है, पारिजात है, सब कुछ इच्छा पूरी करने वाला है। तोत्रे वे त्रैक पाणि, एक हाथ में तो लगाम है, एक हाथ में चाबुक है। ज्ञान मुद्राए, और उंगली वैसे गीता का उपदेश दे रहे अर्जुन की ओर, ज्ञान की मुद्रा में खड़े हैं। कृष्णाय नमः, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। तो इंद्रियों को संयम में करने के लिए इनको संयम के कोड़े लगे, इसका मतलब है इंद्रियों को गलत रास्ते पे नहीं जाने चाहिए। घोड़े बेलगाम हो जाएंगे तो खड्डे में गिरेंगे। तो हम कह रहे थे कि ये शरीर हमारा रथ है, ये गाड़ी है, इसमें यात्री हम हैं, इसमें मुसाफिर हम हैं, इसके अंदर जो बैठा हुआ है पैसेंजर हम हैं। गाड़ी इसको चलाता कौन है, इंद्रियां चलाती हैं, आंख से देख के चलते हैं, पांव से आगे बढ़ते हैं, हाथ से काम करते हैं, ये इंद्रियां इसको चलाती हैं। लेकिन इनका लगाम कौन सा है, बोला मन इसका लगाम है। बोला चलाने वाला सारथी कौन है, ड्राइवर कौन है, बुद्धि इसकी ड्राइवर है। बुद्धि ड्राइवर है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है गुणों का, गुण इन सबको अपने वश में करके चलाते हैं, लेकिन जो यात्री है इनसे अलग है। लेकिन अगर यात्री सावधान नहीं है तो फिर ड्राइवर भी गलती कर सकता है, लगाम भी टूट सकता है, घोड़े भी इधर उधर भटक सकते हैं। इसलिए आत्मा के स्तर पे जो नजर रखता है, और आत्मा अकेला नहीं है, भगवान हमारे साथ हमारे मित्र के रूप में, सुहृद के रूप में, शुभ चिंतक के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, जो हमको कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, हर समय हर जगह हर परिस्थिति में हर जोनी में हमारे साथ रहते हैं। और इसलिए हमारे साथ रहते हैं कि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमारे को हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। भगवान हमेशा हमको समझाने के लिए प्रेरणा देते हैं, लेकिन जब तमोगुण में हम होते हैं, इतने आलसी होते हैं कि भगवान की बात सुनते नहीं हैं। रजोगुण में इतने लोभी लालची और इतने भागा दौड़ी में होते हैं, शोरगुल में होते हैं कि भगवान की बात सुनते नहीं हैं। और सतोगुण में हम इतने सुखी अपने आप को मानते हैं कि भगवान की बात सुनते नहीं है, भगवान हमेशा बोलते रहते हैं हमारे को समझाने के लिए, हमारी दिल में बैठे हैं। सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टो मतस्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, भगवान कहते हैं मैं आपका सुहृद हूँ, आपका शुभ चिंतक हूँ, आपकी दिल में बैठा हूँ, मैं आपको जानकारी देता हूँ, मैं आपको भुलाने की ताकत देता हूँ, मैं आपको ज्ञान देता हूँ, तो उनसे क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि तीन गुणों के प्रभाव से उनकी बात सुन नहीं पा रहे हैं। तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे तो उनकी बात सुन लेंगे, उनकी बात सुन लेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो भगवान आगे कह रहे हैं कि उसके गुण ये हैं, तुल्य प्रिय प्रियो धीरस तुल्य निंदा आत्म संस्थता, तुल्य निंदा आत्मा, कोई निंदा करे और कोई प्रशंसा करे, दोनों में संतुष्ट। क्योंकि निंदा किसकी करेगा? शरीर ही करेगा ना। एक महात्मा था, किसी ने कहा महाराज ये सामने जो घर वाला है ये आपको बहुत गालियां देता है। महात्मा हंसने लगा, बोला मेरे को जानते ना ही, जानता ही नहीं है तो गालियां कैसे देगा, बुरा भला कैसे कहेगा। बोला महाराज आपका नाम लेके कहता है। बोला बेटा देखो वो ये शरीर को कहता होगा बुरा है, वो क्या मुझे जानता है मैं आत्मा हूँ? आत्मा के नाते तो मुझे जानता नहीं है, शरीर के नाते बुरा भला कह रहा है। और ये शरीर कौन सा इतना अच्छा है, ये शरीर तो संसार में दुख देता है सबको, ये संसार में शरीर सबको दुख देता है, सबको ही मान अपमान मिलता है संसार के अंदर, क्योंकि ये शरीर का धर्म है, इससे शरीर को अलग किया नहीं जा सकता। इसलिए जो तीनों गुणों से ऊपर है उसकी कोई निंदा करे कोई प्रशंसा करे, दोनों में बराबर होता है, दोनों को बराबर आया गया, हमारे को कुछ नहीं देना। मान अपमान यो तुल्य, कोई मान दे कोई अपमान करे तो भी उसमें बराबर रहता है। तुल्य मित्र अरि पक्ष हो, कोई मित्र हो या अरि का मतलब दुश्मन हो, किसी का पक्ष नहीं लेता है, सबके लिए बराबर का व्यवहार करता है। सर्वारंभ परित्यागी, वो शुरू से ही सब चीजों को त्याग देता है। गुणातीत सा उच्चते, उसको कहना चाहिए कि तीनों गुणों से ऊपर है। सो तीनों गुणों से ऊपर जो होता है उसके अंदर ये गुण होते हैं, ऐसे व्यक्ति को तीनों गुणों से ऊपर समझना चाहिए। और इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण तीसरे प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं कि तीनों गुणों से ऊपर कैसे हो जाए, होने के लिए कौन सा साधन अपनाना चाहिए। माम च यो अविभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतैते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है तो फिर एक ही रास्ता है, मेरी अविभिचारिणी भक्ति का मतलब शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, एकांत की भक्ति, उत्तम भक्ति। वो अगर करेगा तो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएगा और ब्रह्म भूया या कल्पते और ब्रह्म के स्तर को प्राप्त कर लेगा। फिर वो शरीर के स्तर से ऊपर उठ के ब्रह्म के स्तर पे आ जाएगा। क्या करने से? बोला अनन्य मेरी भक्ति करने से। इसका अर्थ है कि शरीर की सारी क्रियाओं को, इंद्रियों की सारी क्रियाओं को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और ये काम करने से गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भक्ति तीनों गुणों से ऊपर है। भगवान, भक्ति और भक्त, तीनों भगवान, भक्ति और भक्त, ये तीनों प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। इनके ऊपर प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये दिव्य हैं। तो जो शुद्ध भक्ति के रास्ते पे चलता है, और भक्ति करना बहुत आसान है, भक्ति करने के लिए कुछ ज्यादा विद्या की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। ज्ञान के लिए तो पढ़ा लिखा होने की जरूरत है, लेकिन भक्ति के लिए कुछ भी नहीं, कोई भी कर सकता है, किसी भी स्थिति में कर सकता है, किसी भी अवस्था में कर सकता है। जैसे राजा की सेवा करने का अधिकार सारी प्रजा को होता है, एक झाड़ू निकालने वाला भी राजा की सेवा कर सकता है, मंत्री भी राजा की सेवा कर सकता है, ऐसे भक्ति करने का अधिकार सबको है। लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकता है, कर सकती है, माता भी कर सकती है, बूढ़ा भी कर सकता है, देसी विदेशी। तो भक्ति करने के लिए जीभ से भक्ति शुरू होती है, भक्ति शुरू होती है जबान से। जबान के दो काम है, एक काम है जबान का नाम उच्चारण करना, बोलना, दूसरा जबान का नाम है कुछ चखना। एक ये इंद्रिय जिसके दो काम है, आंख का केवल देखना काम है, कान का केवल सुनना काम है, नाक का केवल सूंघना काम है, त्वचा का केवल स्पर्श करना, छूना काम है, पांव का चलना काम है, लेकिन जबान एक ऐसी है जिसके दो काम है। ये ज्ञान इंद्री भी है और ये कर्म इंद्री भी है। बोलने के नाते कर्म इंद्री है और चखने के नाते ज्ञान इंद्री है। जानकारी होती है कि मीठा है खट्टा है, ये जानकारी हमको देती है, ये तो हो गई ज्ञान इंद्री, और ये बोलती है तो ये कर्म इंद्री हो जाती है। इन दोनों को भगवान की सेवा में लगाएं, भक्ति होती है जबान से शुरू। जबान से भगवान का नाम लेते रहें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये मंत्र जपने के लिए ब्रह्मा जी ने कलि संतरण उपनिषद में नारद को कहा कि कोई भी जप सकता है, कभी भी जप सकता है, न कोई नियम है, न कोई टाइम है, और न कोई दोष लगता है इसका, इसको जपने में। और ये ही नाम है जो कलयुग के लिए कलि संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी ने निर्धारित किया है, कलि कलमश नाशनम, कलयुग के सारे कलमश ताप संताप नाश करने वाले का वाला ये नाम है। और दूसरा, घर में जो शुद्ध सात्विक भोजन बने उसको भगवान को भोग लगाकर तुलसी उसके अंदर धार के, तुलसी को धारण करा के भगवान को भोग लगा के प्रसाद को पाओ। प्रसाद को पाना और भगवान का नाम जपना, ये दो काम करने से हमारी भक्ति भगवान की शुरू हो जाती है, और भक्ति शुरू होते ही गुणों का प्रभाव कम होने लग जाता है। ये गुण थोड़ा समय अपना प्रभाव जरूर रखते हैं, जैसे बटन बंद करने के बाद भी चलने वाला पंखा थोड़ी देर के लिए चलता रहता है, वो पंखा थोड़ी देर चलता जरूर है लेकिन उसका बटन बंद हो गया तो आस्ते आस्ते वो रुक जाएगा। ऐसे भक्ति करने से तीनों गुणों का प्रभाव आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगा और हम अपने स्वरूप में आत्मा के लक्षणों के साथ आनंद का अनुभव करके ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करेंगे। ये ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, इसके ऊपर चर्चा कल करेंगे। आज यहाँ वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।